नमस्कार भारत, 16 मई दिन बुधवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। वाराणसी के पुल हादसे में मरने वालों की संख्या 18 हुई, 4 अधिकारी निलंबित।
जब इस तरह के हैवी कोई भी स्पैन ऊपर में इंस्टॉल किए जाते हैं और अलाइनमेंट की जाती है तो ट्रैफिक को रोका जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कभी भी नहीं किया जाता क्योंकि बहुत ही बिजी रोड है। यही एक सबसे बड़ी चूक हुई है यहाँ आज की तारीख में।
कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार, सस्पेंस कायम, लेकिन कांग्रेस का लिंगायत कार्ड क्यों हुआ फेल?
खाली सीतारामैया जी का ऐसा लग रहा था कि जो चुनाव है वो सीतारामैया जी का चुनाव है। जितने भी लिंगायत के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं मध्य और उत्तरी कर्नाटका में, वहाँ पे बीजेपी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा।
और क्या असम में बांग्लादेश के हिंदू शरणार्थियों को बसाने की राह आसान कर रही है प्रदेश सरकार? लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिनेश उप्रेती से। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 18 हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए देर रात बनारस पहुंचे। प्रदेश सरकार ने इस मामले की जाँच के लिए एक कमेटी गठित की है जो 48 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इस मामले में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस को 78 सीटें और जनता दल सेकुलर को 38 सीटें मिली हैं। 2 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। भाजपा विधायक दल की आज बेंगलुरु में बैठक होगी जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल होंगे। कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन जनता दल सेकुलर को दिया है। उत्तर कोरिया ने अपने पड़ोसी दक्षिण कोरिया के साथ आज होने वाली उच्च स्तरीय बातचीत रद्द कर दी है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक दक्षिण कोरिया और अमेरिका की ओर से जारी संयुक्त सैन्य अभ्यास से नाराज होकर उत्तर कोरिया ने यह फैसला लिया है। उत्तर कोरिया की समाचार एजेंसी KCNA ने कहा है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया का साझा अभ्यास उकसाने की कार्रवाई है। एजेंसी ने अमेरिका को भी उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 12 जून को होने वाली बहुप्रतीक्षित मुलाकात के भविष्य को लेकर चेताया है। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि उसे अगले महीने उत्तर कोरिया के साथ होने वाली राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात पर किसी तरह के संशय की कोई सूचना नहीं है। विदेश विभाग की प्रवक्ता हीथर नॉट ने कहा, किम जोंग उन ने पहले कहा था कि वो दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास की जरूरत और उपयोगिता के बारे में जानते हैं। ये अभ्यास वैध और पूर्व नियोजित है। हमें अभी तक इस बारे में न तो उत्तर कोरिया की किसी आपत्ति के बारे में पता है और न ही हमें दक्षिण कोरिया की तरफ से ही ऐसे संकेत मिले हैं। ये थे अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता हीथर नॉट के शब्द। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन के देशों को गारंटी देनी चाहिए कि 2016 के परमाणु समझौते का लाभ ईरान को मिलेगा। अमेरिका ने पिछले दिनों ईरान के साथ 2 साल पुराना परमाणु करार तोड़ दिया था। ब्रसेल्स में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के नेताओं के साथ बैठक के बाद जरीफ ने कहा, हम एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। ये प्रक्रिया बेहद जटिल है और हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है। हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि ईरान को इस समझौते के फायदे मिलेंगे। हमारे राष्ट्रपति का कहना है कि ये कुछ ही हफ्तों में तय हो जाना चाहिए। हम देखेंगे कि अमेरिका को छोड़ समझौते से जुड़े बाकी जो देश हैं उन्होंने जो वादा किया था वो उसे कैसे निभाएंगे। ये थे ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गजा सीमा पर इसराइली सुरक्षा बलों की कार्रवाई में फलिस्तीनियों की मौत की निंदा की है और 1 मिनट का मौन रखा। इसराइली सैनिकों के साथ पिछले 2 दिनों में हिंसक झड़पों में लगभग 60 फलिस्तीनी मारे गए हैं। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल एप्लीकेशन और फेसबुक पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कल निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया, जिसमें अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। चश्मदीदों के मुताबिक पुल का हिस्सा जब गिरा तो नीचे ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, यानी गिरते ही इसकी चपेट में कई कारें और दुपहिया वाहन आ गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर रात वाराणसी पहुंचे और वहां अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री से उन्होंने कहा है कि वो राहत और बचाव के काम पर खुद नज़र रखें। एक कमेटी बनाई गई है जो 48 घंटों के भीतर रिपोर्ट देगी। इससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 4 अधिकारियों को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया। बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी कैंट इलाके में कल शाम निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिर गया था, जिसके बाद अव्यवस्था का आरोप लगा रहे इन लोगों के परिजन फ्लाईओवर के स्पेन में फंसे हुए थे। उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव सूचना अवनीश अवस्थी ने कल रात तक मरने वालों की संख्या 18 बताई थी। 6 से अधिक घायलों को कबीर चौरा अस्पताल और BHU अस्पताल भेजा गया है। अक्टूबर 2015 में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के नजदीक चौकाघाट लहरतारा फ्लाईओवर के विस्तार का काम शुरू हुआ था। कल शाम 2 पिलर के बीच में स्पेन लगाए जा रहे थे, जिस पर सड़क बिछाई जानी थी। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से स्पेन सड़क पर आ गिरा, जिसके कारण सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं। रेलवे स्टेशन के करीब हुए इतने बड़े हादसे के लिए स्थानीय पत्रकार अभिषेक कुमार झा सुरक्षा इंतजाम को लेकर की गई लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हैं।
सिक्योरिटी नॉर्म्स की बात करेंगे तो सिक्योरिटी नॉर्म्स बहुत ही ढीले ढाले थे। यहाँ पे जो सर्विस लेन के बगल में और जो जितने एरिया में निर्माण होता है उस एरिया को बैरिकेड किया जाता है। वो बैरिकेडिंग आपको कहीं भी, जो एक्सटेंशन बन रहा था ये फ्लाईओवर का, वो कहीं भी ये आपको बैरिकेडिंग नहीं दिखेगी। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, जब इस तरह के हैवी कोई भी स्पैन ऊपर में इंस्टॉल किए जाते हैं और अलाइनमेंट की जाती है तो ट्रैफिक को रोका जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कभी भी नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत ही बिजी रोड है, रेलवे स्टेशन का मुख्य रोड है, हाईवे से जोड़ने वाला मुख्य रोड है, तो इसकी वजह से ट्रैफिक कभी भी यहाँ रोका नहीं जाता, और यही एक सबसे बड़ी चूक हुई है यहाँ आज की तारीख में।
हादसे के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों के प्रति दुख जताते हुए ट्वीट किया, और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य घायलों से मिलने वाराणसी के अस्पताल पहुंचे। इस हादसे के लिए जहां लोग लापरवाही को जिम्मेदार बता रहे हैं, वहीं वाराणसी कैंट क्षेत्र के विधायक सौरभ कुमार श्रीवास्तव कहते हैं कि ये चूक का मामला है।
देखिए, इतने बड़े काम में कोई भी व्यक्ति लापरवाही करेगा मुझे ऐसा लगता नहीं। सब काम लोग कर ही रहे थे, मेहनत चल रही थी, रात दिन काम चल रहा था। हम लोग भी बनारस वाराणसी के जो तीनों विधायक, एक दो विधायक मंत्री नीलकंठ जी, हम लोग लगातार जा के देखते भी रहते थे। टेक्निकल इसमें क्या हुआ है ये तो मैं बता नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि कोई चूक हुई है, जिसमें जो भी वजह रही हो तो ये जांच के बाद ही सामने आएगा।
वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। उन्होंने भी कल ट्वीट करके पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के पहले पायदान पर पहुंचने के मौके पर उन्होंने पार्टी मुख्यालय में भाषण से पहले इस घटना का भी जिक्र किया।
अभी कुछ ही समय पहले वाराणसी मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक फ्लाईओवर का हादसा होने के कारण अनेक लोग जो बस में यात्रा कर रहे थे, व्हीकल लेके जा रहे थे, उसके नीचे दब गए हैं, कईयों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई, अधिकारियों से भी बात हुई, मदद की जितने भी साधनों को मोबिलाइज किया जा सकता है तुरंत किया है, बचाने के लिए भरपूर कोशिश हो रही है, लेकिन एक तरफ कर्नाटक के विजय की खुशी और दूसरी तरफ मन पर ये भारी बोझ, और बहुत स्वाभाविक है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में इस प्रकार का हादसा बेचैन बनाते था है।
मारे गए लोगों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि इस हादसे में काफी गाड़ियां कल रात तक भी फंसी थीं। स्पेन काफी भारी था, जिसे हटाने के लिए हाइड्रोलिक प्लेट मंगाई गई थी। बचाव कार्य में NDRF की 7 और सेना की 2 टीमें लगी हैं। मोहम्मद शाहिद, BBC दिल्ली।
खबर सच है अगर BBC पर है।
हमेशा कुछ राज्यों में मन पे एक बोझ रहता था कि मुझे उस राज्य की भाषा नहीं आती, लेकिन कर्नाटक की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया कि भाषा कहीं बीच में आई ही नहीं।
कर्नाटक चुनाव नतीजों में भाजपा के सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बाद दिल्ली स्थित भाजपा दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो लगा नहीं कि सरकार बनाने को लेकर कोई चिंता उनके मन में है। उन्होंने सरकार गठन पर कोई टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन भाजपा को हिंदी भाषी क्षेत्र की पार्टी कहे जाने पर आपत्ति जताई। सुनिए,
कर्नाटक का विजय असामान्य विजय है, क्योंकि इस देश में ऐसी छवि बना दी गई कि भारतीय जनता पार्टी यानी उत्तर भारत की पार्टी, हिंदी भाषी पार्टी, न गुजरात हिंदी भाषी है, न महाराष्ट्र हिंदी भाषी है, न नॉर्थ ईस्ट का कोई राज्य हिंदी भाषी है, लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाता है। इस प्रकार की विकृत सोच रखने वालों को कर्नाटक की जनता ने बड़ा झटका दिया है।
कर्नाटक चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भाजपा को 104 सीटें मिली हैं, लेकिन वो 8 सीटों के अंतर से बहुमत से चूक गई है। मामला इसलिए दिलचस्प हो गया है क्योंकि जो गोवा में भाजपा ने किया वही कोशिश कांग्रेस ने कर्नाटक में की है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद का मोह त्याग कर तीसरे नंबर की पार्टी जनता दल सेक्युलर को समर्थन का ऐलान कर दिया है और अब सस्पेंस इस बात को लेकर है कि राज्यपाल वजूभाई वाला सरकार बनाने का न्योता किसे देंगे, सबसे बड़ी किंतु बहुमत से दूर भाजपा को या चुनाव बाद साथ आए कांग्रेस और जेडीएस को, जिनके पास बहुमत फिलहाल स्पष्ट दिख रहा है। भाजपा विधायक दल की आज 11 बजे बेंगलुरु में बैठक है जिसमें जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान जैसे राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे। बहरहाल एक बार फिर इस चुनावी लड़ाई के रणनीतिक स्तर पर कांग्रेस के लिए कई सबक रहे। सिद्धरमैया सरकार के किसानों की कर्जमाफी और लिंगायतों को अल्पसंख्यकों का दर्जा दिए जाने के फैसले भी नाकाम रहे। सुनिए बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में बड़ी संख्या में चुनावी रैलियां की तो इसके कई मतलब निकाले गए। सवाल ये था कि क्या वो सचमुच घबरा गए हैं कि इतना समय कर्नाटक के चुनाव को दे रहे हैं। उस प्रयास का फल ये हुआ कि कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में तो नहीं आई, लेकिन अकेली सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इन नतीजों पर धारवाड़ विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हरीश रामस्वामी कहते हैं,
पोस्ट मोदीज विजिट यू विल फाइंड दैट
ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि मोदी के भाषणों का असर मतदान के पैटर्न पर पड़ा है। इस तरह का नतीजा आने से ये बात भी सामने आती है कि कांग्रेस ने 3 गलतियां की है। सिद्धरामैया सिर्फ बीजेपी के नेता बीएस येडियुरप्पा के खिलाफ अभियान करना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी के आने से मोदी भी आ गए और मोदी ने दुविधा में पड़े हुए मतदाताओं और युवक के वोट ले गए जो उनके आने तक कांग्रेस के साथ थी। ये थे प्रोफेसर हरीश रामस्वामी के शब्द। कर्नाटका में मोदी फैक्टर पर प्रोफेसर रामस्वामी की बात से राजनीतिक विश्लेषक महादेव प्रसाद भी सहमत हैं, लेकिन वो कांग्रेस की हार से जुड़े दो अहम कारण भी बताते हैं। महादेव प्रकाश कहते हैं,
2018
सिद्धरामैया लगातार ये कहते रहे हैं कि उनकी सरकार अहिंदा सरकार है और उसकी वजह से लिंगायत और वकीलगा जैसी ऊंची जातियां उनके खिलाफ हो गए। दूसरी तरफ अहिंदा जातियां भी उनके समर्थन में एकजुट नहीं रही। ये थे महादेव प्रकाश के शब्द। दरअसल सिद्धरामैया सरकार ने लिंगायत समुदाय को अल्पसंख्यकों का दर्जा देने का फैसला तो ले लिया था, लेकिन वो और उनके विधायक मतदाताओं को ये नहीं समझा पाए कि उससे उनके समुदाय को क्या फायदा होगा, खासकर बच्चों की पढ़ाई में। बहरहाल वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक मदन मोहन कहते हैं,
किसी को पता नहीं था कि उस फैसले से किस तरह के नतीजे मिलेंगे या किस तरह का फायदा हो सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जिस तरह पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बात की उसको आम जनता ने पसंद भी नहीं किया।
बीजेपी कार्यकर्ताओं का मानना है कि मोदी के वजह से उनकी पक्ष को 20 से 25 ज्यादा सीटें मिली होंगी। प्रोफेसर रामस्वामी का मानना है कि मोदी को सकारात्मक वोट मिला, हालांकि इस चुनाव में वोट फीसदी के लिहाज से कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस को 38 और बीजेपी को 36.2 फीसदी वोट मिला। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
राहुल गांधी ने जब कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभाली थी तो गुजरात में मतदान हो चुका था, इस लिहाज से इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये उनका पहला चुनाव था। इन परिणामों से राहुल के भविष्य को कैसे देखा जाना चाहिए, इसी पर BBC हिंदी रेडियो के संपादक राजेश जोशी ने वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता से बात की।
ये तो राहुल गांधी पे भी और पार्टी पे भी, क्योंकि पहले से ही ये बातचीत चल रही थी कांग्रेस में कि पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चुनाव जीतने का सिद्धरमैया पे डाला गया था, और दूसरे जो कांग्रेस के नेता हैं, स्टेट के नेता जो हैं, उतना कोऑपरेशन उनके साथ नहीं था। यदि राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव से देखें तो ये है फर्स्ट इलेक्शन राहुल गांधी के लिए अध्यक्ष बनने के बाद, तो सब लोग उनके तरफ देख रहे थे। अब तक कभी भी कुछ होता था तो राहुल गांधी का यही कहना था कि मेरे पास पूरा पावर नहीं है पार्टी के अंदर,
हालांकि बहुत कम टाइम हुआ है उनको अध्यक्ष बने हुए।
ये भी है कि कांग्रेस के पास अब शायद स्टेट्स क्या बाकी है, पुडुचेरी, मेघालय जो
पंजाब
और पंजाब और कर्नाटक था,
लेकिन इसके अलावा राहुल गांधी के पास प्रोग्राम क्या है, वो प्रोग्राम अपना बताने में क्यों सफल नहीं हो पाते हैं। नरेंद्र मोदी जब बात करते हैं वो ऐसा लगता है कि उनके पास एक क्लियर विजन है, भारत को कहां ले जाना चाहते हैं ये वो जनता को साफ साफ बताते हैं। राहुल गांधी उस क्लैरिटी के साथ बात क्यों नहीं कर पाते हैं?
मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ी खूबी तो वही है कि वो
ठीक से बात
बोलने में माहिर है वो, मगर साथ साथ ये भी कहना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी बहुत मेहनत करते हैं। अब यदि हम राहुल गांधी से सोनिया गांधी तक जाएं, सोनिया गांधी जब आई थी ऐसा नहीं था कि उस वो बहुत बहुत अच्छा वक्ता थी या उनको भाषा पे बड़ा कमांड था, कुछ नहीं, मगर उन्होंने मेहनत किया, उनको हर स्पीच वो हिंदी में हो अंग्रेज़ी में हो उसका स्पीच पहले लिखा जाता था, फिर वो उसको करेक्ट करती थी, वो अपना नुआंस देती थी, फिर उसको प्रैक्टिस करती थी। तो आप देखेंगे कि सोनिया उतना बड़ा ब्रिलियंट स्पीकर ना हो मगर जब भी कोई स्पीच देती है उसके बाद आपको लगता है कि हाँ
कोई ठोस बात होती
है। मगर राहुल गांधी अभी तक जब वो टैलेंटेड स्पीकर नहीं है वो मेहनत दिखाई नहीं पड़ता है, ही वॉन्ट्स टू बी स्पीक एक्सटेम्पोर ऑल द टाइम। मुझे लगता है ये उनको समझना चाहिए या किसी को पार्टी में
बताना चाहिए
जबकि उनको ही उन्होंने ही नेता चुना है, और किसी भी राजनीतिक नेता के लिए ये पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही
सबसे जरूरी चीज है। बात करते हैं अभी जो राज्यपाल हैं कर्नाटक के उनकी भूमिका पे, क्योंकि अगर ये मामला फंस जाता है जैसा कि दिख रहा है फंस गया है, राज्यपाल की क्या भूमिका रहेगी?
देखिए राज्यपाल के पास दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाओ, वो तो लग रहा है भाजपा है, वो सिंपलेस्ट ऑप्शन है, और फिर उनको फिर 4-5 दिन पार्टी को दे टू प्रूफ मेजॉरिटी। और दूसरा यदि कोई 2 या 3 दल एकत्र होकर उनके पास नंबर्स दे
जैसे कांग्रेस और सेक्युलर
और उनको लगता है वो अपने परख के वो देखे कि
यानी गवर्नर के विवेक पर ये निर्भर करता है कि वो किसको बुलाएं।
बिल्कुल, क्योंकि गवर्नर का क्या काम है कि वो देखे कि एक स्थिर सरकार बने।
वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता से बात कर रहे थे राजेश जोशी। बीजेपी को कर्नाटक के किन क्षेत्रों में लाभ हुआ और किन क्षेत्रों में नुकसान हुआ, कांग्रेस और जेडीएस अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो परिणाम कितने अलग हो सकते थे, इन्हीं सवालों पर बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर ने बात की वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामासेशन से।
कांग्रेस के सीट्स के गिरावट तो जरूर आई है, लेकिन बीजेपी जो अपेक्षा कर रही थी जो बढ़त की, बल्कि उन्होंने मिशन 150 उनका वो नारा रहा, मिशन 150 से तो बहुत ही दूर रही। उनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं मध्य और उत्तरी कर्नाटका, वहाँ भी वो मैक्सिमाइज नहीं कर पाए। ये जब मैं दौरा कर रही थी मुझे भी यही लगा कि बीजेपी ने जो ग्राउंड खोया था 2013 में जब येदियुरप्पा जी और श्री रामुलु अलग होके लड़े, वो ग्राउंड तो ज़रूर बीजेपी ने रिकवर किया है, लेकिन उसको वो रिकवरी के साथ और बहुत वो तेज़ी से आगे बढ़ने की ज़रूरत थी, क्योंकि जो पुरानी मैसूरू रीजन में है जहाँ पे 61 असेंबली सीट्स हैं वहाँ पे तो बीजेपी ना के बराबर है। एक समय तो बीजेपी की 115 तक पहुँच गई थी टैली, तो उस समय मुझे लगा कि बीजेपी अपने बलबूते पे मेजॉरिटी की सरकार बनाएगी जो कर्नाटका के लोग भी शायद चाहते हैं। किसी को कोलिशन से बहुत अपेक्षा नहीं है, बहुत एक्साइटमेंट तो नहीं है। तो जब ऐसे लग रहा था कि बीजेपी 115 तक पहुंच जाएगी तो शायद कई लोग खुश भी हुए होंगे, लेकिन वो बात अब नहीं है।
ऐसा भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में थी, उसको लगता था कि सिद्धारमैया ही अकेले सरकार रिपीट करवा देंगे। और अब ये जैसा कि ममता बनर्जी ने भी कहा कि अगर जेडीएस के साथ और कांग्रेस अगर ये साथ लड़ते तो शायद नतीजे कुछ और होते।
कांग्रेस की ओर से सिद्धारमैया जी ने पूरा कमान संभाल लिया। कांग्रेस के आप जो वरिष्ठ दूसरे वरिष्ठ नेता थे वो कहीं बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई नहीं दिए। खाली सिद्धारमैया जी का ऐसा लग रहा था कि जो चुनाव है वो सिद्धारमैया जी का चुनाव है, जो कांग्रेस है कर्नाटका में वो सिद्धारमैया कांग्रेस है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। और सिद्धारमैया जी न किसी को कंसल्ट करते थे, न किसी की राय लेते थे। जो उन्होंने जो लिंगायत को माइनॉरिटी लिंगायत समुदाय को जो माइनॉरिटी स्टेटस घोषित किया है वो भी पूरा पूरा उन्हीं का निर्णय था। कांग्रेस तो नाखुश थी क्योंकि कांग्रेस को मालूम था कि वो निर्णय, वो फैसला जो है उसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं होंगे। और एग्जैक्टली वो ही हुआ है, जो जितने भी लिंगायत के स्ट्रॉन्गहोल्ड्स हैं मध्य और उत्तरी कर्नाटका में, वहाँ पे बीजेपी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा।
राधिका रामासेशन से बात कर रहे थे आदर्श राठौर। अब वक्त है अखबारों की समीक्षा का, जो आज आपको सीधे बेंगलुरु से सुनवाएंगे, जहां से बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नितिन, वहां के अखबारों के हाल तो आप सुनाएं, पर पहले जरा राजनीतिक मौसम और वहां का मिजाज बताएं कि क्या है आज।
मिजाज तो कुलदीप यही है यहाँ पर कि कल रात तक, देर रात तक, 10:30-11 के आसपास तक जितने भी प्लेयर्स हैं जो इन्वॉल्व्ड हैं इस पूरे प्रोसेस में, ये जो अब अगला नया राजनीतिक घटनाक्रम आगे होगा, इसमें चाहे गवर्नर हो, चाहे सिद्धारमैया हो, या चाहे कुमारस्वामी का घर हो, वहां पर भीड़ लगातार बनी रही है। शहर के लोगों में इस बात को लेकर काफी कौतूहल है, काफी जिज्ञासा है कि दरअसल गवर्नर किसको बुलाएंगे पहली बार, भाजपा को बुलाएंगे या जेडीएस और कांग्रेस को बुलाएंगे। और काफी लोगों को काफी इस बात की मायूसी दिखी कुलदीप की, ऐसा ना हो कि ये मिलीजुली सरकार हो किसी की और फिर आगे चल के इसमें स्टेबिलिटी ना हो, ये एक लॉन्ग टर्म ना हो, कि ऐसा ना हो कि सरकार गिरे उससे डेवलपमेंट पर फर्क ना पड़े।
और आज के अखबार क्या कह रहे हैं?
जी कुलदीप, अखबार मेरे पास कोई 5-6 हैं, अपने श्रोताओं से माफी चाहूंगा, हिंदी अखबार लाख ढूंढने पर भी नहीं मिला और कन्नड़ मुझे आती नहीं, लेकिन सभी 6-7 अंग्रेजी अखबार हैं। सबसे दिलचस्प जो हेडलाइन दो मुझे लगी है, टाइम्स ऑफ इंडिया और बैंगलोर मिरर की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है कर्नाटका ड्रामा इज जस्ट बिगन, यानी नाटक अभी शुरू हुआ है कर्नाटक में। और बैंगलोर मिरर की हेडलाइन बहुत अच्छी है, पोल वाला सस्पेंस, यानी जो हमारे वाजू भाई वाला जो यहाँ की गवर्नर है, जिन पर हमने कल शाम को अपने कार्यक्रम में भी विस्तार से चर्चा की थी, अभी भी उन पर बात हुई, उनके ऊपर सारा दारोमदार चला गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ये भी लिखता है कि कांग्रेस ऑफर्स क्राउन टू किंग मेकर, यानी को जेडीएस यानी कुमार स्वामी को कांग्रेस ने एक तरह से क्राउन ताज पहनाने की पेशकश कर दी है। बिजनेस स्टैंडर्ड की हेडलाइन काफी इंटरेस्टिंग है, बीजेपी स्पोर्ट्स बिग बट फेल्स टू विन, यानी बीजेपी ने बड़ा तो गेन हासिल किया लेकिन जीत से दूर रहे। इकोनॉमिक टाइम्स भी लिखता है कि बीजेपी विंस द रेस बट फाइंड जेडीएस नियर द फिनिश लाइन, तो कि बीजेपी रेस तो जीत गई इस चुनाव की लेकिन जब वो पहुंची फिनिश लाइन के करीब तो वहां पर उसको जेडीएस मिली। और इसके अलावा तमाम अखबारों ने यहाँ पर, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, डेक्कन हेरल्ड ने उन तमाम मंत्रियों के नाम तस्वीरें छापी हैं बहुत सुर्खियों से, बहुत प्रोमिनेंटली जो हारे हैं। तो कोई 16 मंत्री हैं कांग्रेस के जो चुनाव हारे हैं, जिसमें फॉरेस्ट मिनिस्टर, वन विभाग के मंत्री हारे हैं, पीडब्ल्यूडी के मंत्री हारे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हारे हैं, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के मंत्री हारे हैं। तो एक तरह से कांग्रेस बस एक तरह से एक फेस सेविंग रहा है कांग्रेस के लिए, कि वरना अगर 15 सीट और कम होती तो हालात काफी बुरे हो सकते थे।
बहुत शुक्रिया नितिन श्रीवास्तव। हिंदी के अखबार आपके पास नहीं थे तो मैं दिल्ली से कुछ हिंदी के अखबार जो मेरे सामने आपको बता दूं। दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है अटका कर्नाटक, ये उनका शीर्षक है, और उन्होंने लिखा है कि सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को रोकने के लिए दूसरे नंबर की कांग्रेस और तीसरे नंबर की जेडीएस को समर्थन दिया। दैनिक जागरण का शीर्षक है सरकार का फैसला राज्यपाल के हाथ, तो कमोबेश वही बात जो अंग्रेजी अखबारों में है उसको शीर्षक बनाया है। अमर उजाला का शीर्षक है कि भाजपा को रोकने के लिए साथ आए कांग्रेस और जदएस, 104 सीटें जीतकर बहुमत के किनारे ठहर गई भाजपा। बहुत शुक्रिया नितिन श्रीवास्तव, हमसे जुड़े थे सीधे बेंगलुरु से।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
देश के पूर्वोत्तर राज्य असम में केंद्र सरकार के प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 का जोरदार विरोध हो रहा है। इस विधेयक के संशोधन से असम में बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों को बसाने और उन्हें नागरिकता देने का रास्ता साफ हो जाएगा। सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे जातीय संगठनों का कहना है कि राज्य में पहले से ही अवैध रूप से आए बांग्लादेशियों का बोझ है और अब असम को बांग्लादेशियों को बसाने की जगह नहीं बनने दिया जाएगा। गुवाहाटी से दिलीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
असम में नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध यूं तो शुरू से हो रहा था, लेकिन हाल ही में इस विधेयक पर सुनवाई करने पहुंची संसद की संयुक्त समिति की बैठक के बाद समूचे प्रदेश में जमकर विरोध शुरू हो गया है। इस दौरान विरोध कर रहे संगठन रेल सड़क मार्गों को बाधित कर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, जबकि कई संगठन बीजेपी सरकार गो बैक के नारे लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी भारी संख्या में लोग अपना विरोध जता रहे हैं। दरअसल नागरिकता संशोधन विधेयक पड़ोसी मुल्क खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के तहत भारत आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से जुड़ा विधेयक है। ये फिलहाल संसद की संयुक्त समिति के पास विचाराधीन है, लेकिन विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि नागरिकता अधिनियम में संशोधन के साथ ही बांग्लादेश से हजारों की तादाद में हिंदुओं का यहाँ प्रवेश के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये विधेयक असमिया जाति के अस्तित्व के लिए खतरा है। इस विधेयक का विरोध कर रहे कृषक मुक्ति संग्राम समिति के अध्यक्ष भास्को डी सैकिया ने बीबीसी से कहा,
सरकार और बीजेपी आरएसएस का पूरा कोशिश चला रहा है कि किसी तरह ही ये बिल को पास कराने के लिए। जब जेपीसी का हियरिंग हुआ था 7 मई में, हजारों से हजारों लोग आकर जेपीसी ये कह दिया कि ये बिल हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल से बांग्लादेश से लाखों लाखों के लोग असम आएगा। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये उनका एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रेटेजी है। बांग्लादेश से लाखों के लाख हिंदू बांग्लादेश से यहाँ पर सेटल करके उन्होंने एक परमानेंट भूखंड क्रिएट करने के लिए बीजेपी और आरएसएस ने कोशिश कर रहा है।
असम में इस समय बांग्लादेशी घुसपैठियों की शिनाख्त के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट करने का काम चल रहा है। ऐसे में हिंदू बांग्लादेशियों को नागरिकता देने के इस विधेयक का विरोध बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता भी कर रहे हैं। असम प्रदेश बीजेपी की कार्यकारी सदस्य मीरा बो ठाकुर कहती है,
नहीं एक्चुअली क्या है, हम बीजेपी में जुड़े हुए हैं तो बात बीजेपी के नहीं है, और जब अपना जाति माटी भेटी का क्राइसिस होगा तो सरकार और पार्टी ये अलग हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी राष्ट्र के लिए अपना देश के लिए चिंता करेंगे ना। तो हम लोग ये विधेयक का विरोध कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही घुसपैठी हम लोग का इतना भारी संख्या से असम में है, तो हमारी जो इरोशन में फ्लड इरोशन में जो लोग अभी इतने के लिए जगह नहीं है, लोगों का साथ जमीन का पत्ता नहीं है, तो उन लोगों को संस्थापन का व्यवस्था अगर नहीं किया जाए तो बाहर से लोगों को लाने का ये परिकल्पना अच्छा नहीं है। अभी
नागरिकता संशोधन विधेयक पर एक ओर जहां विरोध हो रहा है, वहीं इस पर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। प्रदेश की बीजेपी सरकार में शामिल क्षेत्रीय पार्टी असम गण परिषद ने भी इस विधेयक का विरोध करते हुए गठबंधन से अलग होने की बात कही है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने राज्य के कई अखबारों के संपादकों को बुलाकर ये भरोसा दिया है कि असम के मूल लोगों की सुरक्षा को लेकर उनकी सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी, गुवाहाटी।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर दिनेश उप्रेती से।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 18 हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए देर रात बनारस पहुंचे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। भाजपा विधायक दल की आज बेंगलुरु में बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल होंगे। कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन जनता दल सेकुलर को दिया है। उत्तर कोरिया ने अपने पड़ोसी दक्षिण कोरिया के साथ आज होने वाली उच्च स्तरीय बातचीत रद्द कर दी है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष देख रहे थे देवाशीष और फेसबुक पर इसे आप तक पहुँचा रहे थे नवीन नेगी। तो अब कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।